दिलाराम बाबा के दिल तख्त नशीन, दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले, दिल में बाबा के स्नेह को समाने वाले, दिल के चिकित्सक आदरणीय डॉक्टर सतीश भाई जी का हम दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। विषय है सर्व समस्याओं में समाधान स्वरूप। तो समस्याएं तो जीवन में आती रहती है और समस्या को समस्या समझेंगे तो वो बहुत बड़ा रूप ले लेती है, लेकिन समाधान स्वरूप बनकर जब उसको स्वीकार कर लेते हैं तो समस्या समस्या नहीं रहती और ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिल जाती है। तो आज बहुत सुंदर विषय से हम लाभान्वित होंगे भाई जी से, सर्व समस्याओं से समाधान स्वरूप कैसे बने। भाई जी का परिचय है, दिल्ली में ही आपने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की, हृदय रोग चिकित्सा संबंधित आप अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं के सदस्य हैं, सोल माइंड बॉडी एंड मेडिसिन के नवीनतम विचारधारा के रिसर्च वर्क पर आपको 2001 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से अवार्ड मिला है। अभिनंदन में ताली बजाए। सन 2000 में यूएसए में होलिस्टिक हेल्थ केयर पर आपको गोल्ड मेडल प्राप्त हो चुका है। वर्तमान समय ग्लोबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में आप कार्यरत है। भारत सरकार के डीआरडीओ के साथ मिलकर जिस प्रोजेक्ट पर आप कार्य कर रहे हैं उसका नाम है कोरोनरी हार्ट डिसीज अर्थात कैट प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं, राजयोगी लाइफस्टाइल जिससे बहुत सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। तो बाप दादा को दिल से दिल तक प्रत्यक्ष करने की सेवा में आप अति व्यस्त रहते हैं, लेकिन साथ साथ दिल से तपस्या में भी व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी से हम इस विषय पर सुनेंगे, सर्व समस्याओं का समाधान किस तरह से प्राप्त होवे। ओम शांति।
ओम शांति। चलिए हम इस विषय पर सर्व समस्याओं से मुक्त कैसे बने या सर्व समस्याओं से मुक्त समाधान स्वरूप कैसे बने। कल भी प्यारे बाप दादा ने मुरली में हमें सुनाया, महावाक्य में बाबा ने कहा सारे विश्व में आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन हो गई हैं, दुखी अशांत हो गई हैं, दुखी अशांत होकर के पुकार रही हैं। तो बाबा ने अपने बच्चों का आह्वान किया, दो स्वरूप का आह्वान किया, एक तो रहम दिल और कल्याणकारी और दाता के बच्चे मास्टर दाता बनकर के हम अर्थात समाधान स्वरूप बनकर के आत्माओं को हम शांति और शक्तियों का दान करें, उन पर रहम करें। ऐसे देखो चारों तरफ आज समस्याएं ही समस्याएं हैं, हर व्यक्ति के अंदर अपने अंदर समस्या है, घर में समस्या है, कार्यस्थान पर समस्या है, हर जगह प्रॉब्लम्स हैं, समाज में समस्याएं हैं, देश में समस्या है, सारे विश्व में समस्या है, प्रकृति के पांचों तत्व एकदम बेहद कंट्रोल से बेहद बाहर चले गए हैं। एक तरफ चारों तरफ वर्ल्ड वार का माहौल है, चारों तरफ युद्ध, अकाले मृत्यु का बाजार गर्म है। आप देखो तो मन में जरा भी किस बच्चों का मन देखो, बड़ों का मन देखो, किसी का भी मन देखो, बहुत अशांत है, बहुत दुखी है। तो पहले हम समझते हैं कि समस्या कौन कौन समस्या है, उसका जड़ क्या है, समस्या की जड़ क्या है, कहां से आती है समस्या, और उसका हम रूट कॉज को समझ जाएं, उसकी रूट को हम ठीक कर ले, जड़ को ठीक कर लेंगे तो समाधान स्वरूप बन जाएंगे। अब अंत समय समस्याओं में जीने का नहीं है, अभी तो समाधान स्वरूप बनके मौजों में जीने का संगम युग क्या है? मौजों का युग है, मौज मनाने का युग है, बाबा से परमात्मा मिलन की मौज मनाने का युग है, समय है। अगर अभी भी हम मौज के बजाय समस्याओं में रहे तो कब मौज मनाएंगे? कब अतीन्द्रिय सुख आनंद का अनुभव करेंगे? कब बाप दादा की गोदी और दिल तख्त नशीन बनेंगे, अतीन्द्रिय सुख आनंद के झूलों में झूलेंगे? ये समय तो अतीन्द्रिय सुख आनंद के झूलों में झूलने का समय है, बाबा की गोदी में समाये रहने का समय है, बाबा का दिल तख्त नशीन बनने का समय है। तो देखते हैं पहले समस्या तनाव कब बन जाती है। जब समस्या तनाव बन जाती है तो मन के रोग, तन के रोग के रूप में, घरों में कले कले कलेश के रूप में, झगड़े के रूप में, समाज में घर कले कलेश के रूप में, झगड़े के रूप में, कोर्ट केसेस, पुलिस जो राइट्स होते हैं, कम्युनल राइट्स होते हैं, आतंकवाद होता है, उस रूप में जन्म लेती है, वर्ल्ड वार के रूप में जन्म लेती है। और जब मनुष्य का मन प्रभावित होता है तो प्रकृति भी प्रभावित होती है, और तब प्रकृति की नेचुरल क्लेमिटीज आती हैं, बड़ी तेजी से आती हैं। तो अगर हम देखें तनाव क्या चीज है, तनाव का एक परिभाषा है या तनाव का एक फॉर्मूला है, तनाव स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स डिवाइडेड बाय कोपिंग एबिलिटी। जब ये रेशो एक से अधिक होता है तो हम स्ट्रेस महसूस करते हैं, तनाव महसूस करते हैं। तो प्रेशर माना आंतरिक समस्याएं, प्रेशर क्या हो सकते हैं? आंतरिक समस्या हो सकती है या बाहरी समस्याएं हो सकती है। आंतरिक समस्या क्या होती है? आंतरिक में तो मन आता है, मन की समस्या, मान लीजिए मुझे बात बात में गुस्सा आता है, मेरी नेचर बन गई, घर में देख के, बड़ों को देख करके, हमारे घर में पिताजी गुस्सा करते या कोई और गुस्सा करता था, या जहां भी हमारी बड़ा लालन पालन हुआ, पालन पोषण हुआ, तो वहां वातावरण ही ऐसा था, वो देख करके मेरे अंदर भी ऐसी नेचर बन गई है ना। या मैं बहुत सेंसिटिव हूं, बहुत इमोशनल हूं, मेरे को बहुत चिंता रहती है, एंजाइटी बहुत होती है ना। मैं दूसरों के अंदर अवगुण देखने की बहुत आदत है, संस्कार ही हो गया है ना, ये मेरी अंदर की समस्या है, राइट। मुझे हमेशा बहुत जल्दबाजी रहती है, मैं बात बात में उदास हो जाता हूं, अपने मन की बातें शेयर नहीं कर पाता हूं, जिसको हम कहते हैं भाई हम लोग अपने आप को वेंटिलेट नहीं कर पा रहे, अंदर जहर भरता जा रहा है, रिजेंटमेंट गुस्सा आ रहा है पर अंदर अंदर भरा हुआ गुस्सा, सहन तो कर पा रहा हूं किंतु समा नहीं पा रहा हूं, उबल रहा है अंदर अंदर। इसी से हार्ट अटैक आते हैं, इसी से कैंसर होता है, रिजेंटमेंट, अंदर से रिजेंटमेंट जब होती है, ये बहुत सारी बीमारी का, एसिडिटी बनना, ब्लड प्रेशर होना, डायबिटीज, अंदर कड़वाहट भर गई है, तो ये हमारी अंदर की समस्या है। नींद ना आना, ये भी अंदर की समस्या, मन की समस्या है, बहुत तेज विचार चलते हैं, ये अंदर की समस्या है। ऐसे मेरे शरीर में रोग है, मान लीजिए ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है, माइग्रेन है मुझे, ये मेरी अंदर की समस्या है, मेरा ये भी मेरे शरीर की, मन की समस्या, तन की समस्या, अंदर की समस्या है। और आज देखें तो हर आदमी पीड़ित है, मन की समस्याओं से, तन की समस्याओं से, हर एक को रोग है, पेट की खराबियां हैं, एसिडिटी बनती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, सांस की तकलीफ है, स्किन की बीमारियां हैं, मतलब बहुत सारी बीमारियां हैं। तन की तो मैं आपको बताऊं, हर आदमी को दो बीमारियां हैं, तो हर समस्या से हम बहुत पीड़ित हैं। हर तीसरे आदमी को एसिडिटी ज्यादा बनती है, हड्डियों की तकलीफें हैं, ये हमारी, ये भी समस्या है ना। फिर दूसरा है बाहर की समस्याएं, एक्सटर्नल प्रेशर्स, वो क्या है, घर में हमारी बनती नहीं है, पति पत्नी की नहीं बनती है, बच्चों से नहीं बनती, बच्चों की माँ बाप से नहीं बनती है, जहां काम करते हैं वहां हमारी आपस में नहीं बनती है, हमारे बॉस से नहीं बनती, वो समस्या है। आज पॉल्यूशन बहुत है, दिल्ली तो गैस चैम्बर, बॉम्बे जैसे स्थान तो बहुत पॉल्यूशन बढ़ गया है, बड़े बड़े शहर में बहुत पॉल्यूशन हो गया है, ये भी एक समस्या है। कोर्ट केस है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, तो वो सब सिर्फ सब समस्याएं, आतंकवाद बढ़ रहा है, कम्युनल राइट्स बढ़ रहे हैं, तो ये बाहरी समस्याएं हैं। किंतु अगर नीचे जो नीचे डिवाइडिंग फैक्टर क्या है, कोपिंग एबिलिटी, आत्मिक शक्ति, आत्मिक शक्ति, अगर ये रेशियो एक से अधिक आत्मिक शक्ति कम हो जाए और प्रेशर बढ़ जाए, समस्या बढ़ जाए, तब हम तनाव महसूस करते हैं। तब हम या तो मानसिक रोगी बन जाते हैं या तन के रोगी बन जाते हैं, शरीर हमारा बीमार हो जाता है। अब क्या करें? और आत्मिक शक्ति हम कितनी बढ़ा सकते हैं? आज का इंसान कैसा हो गया है, उसके पास आत्मिक शक्ति नहीं है, भक्ति कर रहा है पर आत्मा एम्पावर नहीं हो रही है, आत्मा में शक्ति नहीं आ रही है, तो छोटे छोटे प्रेशर भी आज उसके लिए बड़ी बात हो जाती है और थोड़ी थोड़ी बात में तनाव ग्रसित हो जाता है और वो बीमार हो जाता है, या तो मानसिक रोगी बन जाता है या तो शरीर का रोगी, या दोनों रोग एक साथ आ जाते हैं। और एक 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 एक, एक, एक आदमी को पांच चार छह 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 रोग आ जाते हैं, दस दस रोग आ जाते हैं, और स्पेशली ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा आते हैं। ये पता है आपको ब्राह्मणों को रोग ज्यादा क्यों होते हैं? मन के और तन के दोनों ज्यादा होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि हम दुनिया में एक का हिसाब एक है और हमारा हिसाब क्या है, बाबा का बनने के बाद एक का सौ गुना है। हम कुछ भी गलती करते हैं, थोड़ी सी भी गलती करते हैं, वो हमें बहुत ज्यादा फील होती है। दुनिया वाले क्रोध करके उनको पता नहीं हमने गलत किया ठीक किया, वो कहते ठीक किया। कुछ भी गलत करते हैं उनको फील नहीं होता, हमें बहुत फील होता है। थोड़ी सूक्ष्म भी मिस्टेक, किसी को गलत बोल भी दिया ना, तो वो भी फील होता है मैंने ऐसा क्यों बोला। रियल में अंदर इतना फील होता है, तो हमें सौ गुना असर होता है, इसलिए हमें हर बीमारी ज्यादा होती है। आप सोचते हो ना हमको इतनी बीमारी क्यों हो रही, ब्राह्मणों को, ब्राह्मण तो राजयोग करते हैं, तो हमें इतनी बीमारियां क्यों होती हैं, हमें इतनी समस्याएं क्यों आती हैं? ये बहुत ही सूक्ष्म हिसाब है ब्राह्मणों का। जैसे कहते हैं ना, अगर ट्रैफिक में हम जा रहे होते हैं, हम रेड लाइट क्रॉस कर लेते हैं और कहते हैं, वो पूछता है ट्रैफिक वाला, तो हम कहते हैं हम डॉक्टर हैं। अच्छा आप डॉक्टर हैं, तो आपसे हम ज्यादा ज्यादा पेनल्टी लगाएंगे, आपको ज्यादा फाइन करेंगे आपको, है ना, क्योंकि आप तो समाज के शिक्षित लोग हैं, अगर आप ही गलत करेंगे तो और दुनिया में कितना ज्यादा करेंगे। तो हम तो बाबा के वो बच्चे हैं जो विश्व नियंता, मास्टर विश्व नियंता, हम निर्माता हैं नए विश्व के, और हम ही गलतियां कर रहे हैं, हम ही मर्यादा से भटक रहे हैं, नियमों से भटक रहे हैं, तो हमारा ज्यादा, हमें बहुत ज्यादा हमारा हिसाब किताब बन जाता है, हमें बहुत ज्यादा समस्याएं महसूस होती हैं। तो चलिए हम अब समझते हैं, थोड़ा सा गहराई में जाते हैं समस्याएं, ये तो समझ गए ना हम कैसे हमारे अंदर कब हमें तो आत्मिक शक्ति हम कितनी बढ़ा सकते हैं, जितनी चाहे बढ़ा सकते हैं, जिसको हम अब आत्मिक शक्ति बढ़ाने का तरीका क्या है, योग या मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन। और योग क्या है, योग माना कनेक्शन, कनेक्शन विद व्हाट, कनेक्शन विद द ट्रूथ, सत्य से जुड़ना ही योग है, सत्य से जुड़ना ही योग है। और सत्य क्या है, ट्रूथ क्या है, ट्रूथ है सत्य की दो विशेषताएं हैं, एक सत्य सदा होता है, सत्य शाश्वत होता है, एटर्नल होता है, उसका जन्म या मरण नहीं होता, वो जन्म मरण से परे है, सदा ही होता है। दूसरा, सत्य अनचेंजेबल है, अपरिवर्तनशील है। अब देखिए राजयोग माना कि मेरा सत्य से कनेक्शन है या मेरा असत्य से कनेक्शन है। अगर मेरा असत्य से कनेक्शन तो समस्या है, सर्व समस्याओं का आधार क्या है, जड़ क्या है, मेरा असत्य से कनेक्शन है, मैं असत्य से जुड़ा हुआ हूं। अगर मेरा थोड़ा भी सत्य के बारे में चिंतन चलता है तो मेरे पास समस्याएं हैं, समस्याओं का पहाड़ है। और अगर मैं सत्य से जुड़ा हुआ हूं तो मेरे सामने समाधान ही समाधान है, मैं मौजों का जीवन है, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, मैं योग का प्रयोग कर सकता हूं। तो ये हमें समझना है। तो सत्य माना, अब देखिए असत्य क्या है, दुखों की जड़ क्या रही, दुखों की जड़ है असत्य, समस्या क्या है, असत्य। तो अगर हम समझे बुद्धि और मन, अब समस्याएं हमारे अंदर आ गई हम जानते हैं, पर वो संस्कार बन गई है, आदत बन गई है, आदत ही जीवन है, संस्कार ही जीवन है, वो ऑटोमेटिक हमसे कर्म करा लेते हैं और हम चक्रव्यूह में फंसते जाते और गहरे फंसते जाते और गहरे फंसते जाते। देखिए अर्जुन चक्रव्यूह में जाता है पर साथ में उसका साथ श्री कृष्ण है, उसका सारथी भगवान है। भगवान तो शिव बाबा है किंतु कहा गया, कहानी में कहा गया, महाभारत में कहा गया, तो जिसके साथ भगवान शिव बाबा है वो चक्रव्यूह में इस चक्रव्यूह में समस्याओं के चक्रव्यूह में जाके चक्रव्यूह को भेद करके वापस आ जाता है, समस्याओं के चक्रव्यूह से बाहर आ जाता है। और अभिमन्यु भी महारथी है किंतु उसके साथ भगवान नहीं है, उसको श्रीमत पर नहीं है, उसके साथ साथी भगवान नहीं है, इसलिए चक्रव्यूह में जाके मारा जाता है। तो हम ब्राह्मणों में से भी जो निरंतर परमात्मा को सर्व संबंधों से अपना बना करके रखते हैं, सदा अपने साथ रखते हैं, सदा अपने दिल में बिठा करके रखते हैं, वो इस समस्याओं रूपी चक्रव्यूह से तुरंत सहज उसको भेद भी लेते हैं और बाहर भी आ जाते हैं। रोज हमारे सामने चक्रव्यूह है, समस्या का चक्रव्यूह सुबह से शुरू होता है और रात तक समस्या माया डिफरेंट डिफरेंट रूप में चक्रव्यूह बनाती रहती है। उन चक्रव्यूह से बाहर आने के लिए परमात्मा का सारथी होना बहुत जरूरी है, परमात्मा मेरे दिल में समाये रहे। अब इसकी थोड़ी गहराई में चले जाते हैं। बुद्धि और मन, जब बुद्धि और मन साथ साथ मिलकर कर्म करते हैं तो संस्कार बनते हैं, वो संस्कार आदत बन जाते हैं। अब सब कई बार हम कहते हैं कि मैंने तो ये मेरे को आदत है, इतने फला फला इतने समय से मुझे ऐसी आदत है, फला मैंने आज तक मान लीजिए 5,000 बार गुस्सा किया और मैं अभी मान लीजिए 40 साल से अभ्यास कर रहा हूं या 20 साल से 10 साल से अभ्यास कर रहा, योग का अभ्यास कर रहा हूं, तो मैंने क्या मेरे क्रोध पे विजय अभी तक क्यों नहीं हुई। मैंने जब ये बात समझ ली, बुद्धि ने समझ ली, बुद्धि में समझ आ गई, मन ने उसके अनुसार विचार करने शुरू किए और उसके हिसाब से मैंने कर्म करना शुरू किया, मैंने 5 बार कर्म किया कि तू 5,000 बार गुस्सा किया हुआ है, तो 5 बार का स्मृति स्वरूप और 5,000 बार का स्मृति स्वरूप क्रोध का है, तो विजय किसकी होगी। अगर अटेंशन रखेंगे बार 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 अटेंशन, तो कम से कम 5,000 एक बार जब मैं क्या करूंगा, क्रोध वाली परिस्थिति में भी क्रोध नहीं करूंगा, उस स्मृति स्वरूप में स्थित होकर के बाबा से कंबाइंड होकर उस स्थिति को सहन करके संभालूंगा, तो मेरी विजय क्रोध पर होनी शुरू हो जाएगी। समझ में आ रही है आपको ये बात, क्योंकि अभी तक कई भाई बहने 40-50 साल चलने के बाद उनको कोई बात पर गुस्सा आ जाता है, कई बार बाहर नहीं आता, अंदर अंदर आ जाता है, माथा गर्म हो जाता है, राइट। तो बुद्धि जो है, अब समझ लेते हैं बुद्धि और मन क्या है, कैसे आपस में कनेक्शन है, बुद्धि मन संस्कार का आपस में कनेक्शन क्या है, मैकेनिज्म क्या है। तो बुद्धि के 4 आस्पेक्ट है। पहला आस्पेक्ट है दिल, चेतना, कॉन्शियसनेस, जिसे हम कॉन्शियसनेस या कॉन्शियंस भी कह देते हैं। जैसे आपने देखा एक शूटिंग बोर्ड होता है, उसके बीच में एक बिंदु होता है, एक सर्कल होता है, पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, जो पहला सर्कल है ना वो दिल है। तो पहला सर्कल जहां पे सबसे आत्मा है, सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जा वहां सबसे ज्यादा है, उसे दिल कहते हैं, चेतना कहते हैं, हार्ट ऑफ द सोल। ये तो हार्ट बॉडी का है, हार्ट ऑफ द सोल। फिर उससे उस दिल में मेरे क्या है, उससे विवेक बनता है, विजडम बनती है, जिसे हम बाबा कहते हैं सेंसिबल। दिल में क्या है उससे बुद्धि बनती है और विजडम जिसके पास है वो समझदारी है, उससे समझदारी। बाबा को कैसे बच्चे चाहिए, बुद्धिमान बच्चे नहीं चाहिए, बाबा के बुद्धिमान बच्चे तो बहुत हैं, बाबा को समझदार बच्चे चाहिए। विजडम है ना जिसमें परम सत्य को परखने की शक्ति, परमात्मा को परखने की शक्ति आ गई हो, यही है यही है यही है। मेरे तरफ झंडा लहर जाए, बाबा का झंडा लहर जाए दिल में, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ये सच्ची दिल साफ दिल। दिल में बाबा के अलावा कुछ और ना हो, वो है सच्ची दिल। और साफ दिल माना बाबा की मुरली के अलावा कुछ और ना हो, एक बाबा की श्रीमत के अलावा जरा भी मनमत परमत का अंश ना हो, वो है साफ दिल। तो ऐसे दिल के आधार पे हमारा विवेक बनता है, विजडम बनती है, परम सत्य को परखने की शक्ति। जब दिल में बाबा होता है और बाबा की मुरली सदा स्थिर रहती अंदर, तो हमको सत्य की समझ आती है, एबीसीडी समझ में आती है। मैं कौन हूं, मैं देह नहीं, मैं देह को चलाने वाली आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं, सर्व संबंध मेरे शिव बाबा के साथ हैं, और ड्रामा में जो हुआ, जो कुछ भी हुआ है, मेरे अपने के कर्मों का फल है। अभी तक जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है या हो रहा है, वो मेरे अपने किए हुए कर्म है, उसका फल मुझे मिल रहा है। समस्याओं की जड़ ये ड्रामा है। अगर हमने समस्या को खत्म करना है, तो जिसने ड्रामा को फुल स्टॉप लगाना सीख लिया, वो समस्या ड्रामा को फुल स्टॉप लगाना ताकत आ गई, तो समस्या खत्म हो जाती है। तो एबीसीडी की समझ, ड्रामा की समझ क्या है? मान लीजिए आपने किसी से 100 साल पहले 10 रुपया उधार लिया, ये ड्रामा है, कर्म सिद्धांत है। अगर आपने तुरंत वापस कर दिया तो कोई पाप नहीं हुआ। पाप क्या है? अगर मैंने उसका पाप वापस करने में 100 साल, मैंने वो पिछला लास्ट जन्म लिया, वापस नहीं कर पाया, इस जन्म में वो व्यक्ति आकर के मेरा क्या बनेगा? या तो बिजनेस पार्टनर बनेगा, या जीवन साथी बनेगा, या बच्चा बनेगा, या बच्ची बनेगा, और उसको मुझे 10 रुपये वापस करना पड़ेगा। और 100 साल जो मैंने डिले किया उसको, उसका ब्याज कितना हो गया पता है आपको? उसका ब्याज हुआ 4,18,35,040 रुपया। सुना आपने? ये पाप है, तो मुझे वो देना पड़ेगा। अगर किसी के मैंने 2 बार इंसल्ट की 100 साल पहले, 100 साल के बाद वो व्यक्ति मेरी कितनी बार इंसल्ट करेगा बताओ? कितना ब्याज हो गया? कम से कम 20,000 बार मेरी इंसल्ट होगी, और मुझे वहीं रहना होगा, इंसल्ट भी रोज सुबह शाम सहनी होगी। किसको 2 गाली दी होंगी 100 साल पहले, इस जन्म में कितनी गाली खानी पड़ेगी? कम से कम 20,000 बार गाली खानी पड़ेगी। किसको धोखा दिया होगा 100 साल पहले 1 बार, तो इस जन्म में वही व्यक्ति मेरे घर में रहकर मुझे 1,000 बार धोखा देगा कम से कम, और मुझे धोखा खाते वहीं रहना पड़ेगा। ये ड्रामा है, ये कर्म सिद्धांत है, और हम यही सोचते रहते हैं, इसलिए मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है? मैं तो इसके साथ गलत नहीं कर रहा हूं, मैंने कभी गलत नहीं किया, फिर भी व्यक्ति मुझे क्यों तंग करता है दिन रात? क्यों मेरी ग्लानी करता है? क्यों मेरा अपमान करता है? क्यों मुझे धोखा देता है? यही समस्या है संबंधों में, कार्यस्थान पर, समाज में, देश में, देशों के बीच में, सारे विश्व में, यही समस्या है। क्योंकि जब हम आत्माएं परमात्मा के साथ सर्व संबंध निभाना सीख जाती हैं, एक एक संबंध के अनुभव की अथॉरिटी बन जाती हैं, बाबा को सदा कैसे कंबाइन ना सीख जाती हैं, तो हम इसको, इस ड्रामा को फुल स्टॉप लगा सकते हैं, क्योंकि मेरे अपने किए हुए कर्म है। और जब बाबा से हम तपस्या के रूप में उसको निरंतर जीवन बना लेते हैं, तो ये मेरा ब्याज माफ होने लगता है। तपस्या से क्या फायदा, योग से क्या फायदा होता है? विक्रम विनाश किसे कहते हैं? 10 रुपया जो मूलधन है ना, वो तो देना ही पड़ता है, 2 गाली तो खानी ही पड़ती है, 2 बार इंसल्ट, 2 बार तो मुझे सहनी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर मेरी तपस्या एक्यूरेट है, मेरा योग एक्यूरेट है, तो क्या फायदा है योग तपस्या से? मेरा जो ब्याज है ना, वो माफ हो जाएगा, 4,18,35,040 रुपया माफ हो जाएगा। ये योग का फायदा। अगर मैं एक्यूरेट विधि से करता हूं तो माफ हो जाता है। अगर मैं 50% करता हूं तो कितना माफ हुआ? 2 करोड़ कितना माफ हुआ? 2 करोड़ 9 लाख माफ हो गया। 75% एक्यूरेट करता हूं कितना माफ हुआ? 1,45,00,000 माफ हुआ। 1,04,00,000 मुझे अभी भी देना पड़ेगा। तो ये, इसलिए एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। अष्टतन क्यों बनते हैं? 108 की माला क्यों बनते हैं? अष्टतन वो जो है बाबा के श्रीमत को एक्यूरेट विधि से, बाबा को एक्यूरेट विधि से याद करते हैं, निरंतर बाबा की याद में रहते हैं। इसलिए वो एक्यूरेट, जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट अष्टतन बन जाते हैं, जो उससे कम नंबर वार जो बाकी बनते हैं वो 100 की माला में आ जाते हैं, और उसके बाद जो एक्यूरेसी थोड़ी कम है वो 9 लाख में आ जाते हैं, और जो उससे भी कम एक्यूरेसी वाले हैं वो फिर 18 लाख और 2 करोड़ में आ जाते हैं, त्रेता युग के अंत तक आ जाते हैं। तो ये जो है इसकी महीनता है। तो पहले दिल, तो दिल में सत्य है नहीं है, तो दिल में अगर बाबा है, दिल में बाबा की मुरली है, तो मेरा विवेक क्या है? तो मेरे को एक तो सत्य की समझ आ गई, दूसरा पवित्रता, पवित्रता की समझ आती कि पवित्रता क्या है। जितना एबीसीडी का मनन चिंतन मंथन करता जाता हूं ना, मेरे को पवित्रता की समझ आने लगती। पवित्रता माना क्या? मैं भी तो आत्मा, ये भी तो आत्मा है, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, ये भी तो आत्मा है, ये भी तो हम एक बाप के बच्चे आपस में भाई भाई है। अपना सत्य परम सत्य से कंबाइंड होकर, मैं पास को फुल स्टॉप लगा के अपने सत्य में टिक के उस परम सत्य बाप से कंबाइंड होकर के फिर मैं दूसरों से बिहेव करता हूं, यही पवित्रता की समझ आने लगती है। पवित्रता आई नहीं है बाबा के दिल में आने से, पवित्रता आई नहीं है अभी, पवित्रता की समझ आने लगती है, ये पवित्रता है। जब पवित्रता आने लगती है तो हम कोई भी बात होती है ना, पवित्रता आ गई तो कोई बात भी जीवन में कुछ भी हो जाता है, ऊपर नीचे कुछ नुकसान हो जाता है, कोई हमारी कोई हमारी अपमान अपमान जो कल था ना, मान अपमान दुख सुख लाभ हानि में कुछ भी होते हुए, तन में मन में धन में संबंध संपर्क कुछ भी ऊंच नीच होती है, उसमें हम एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा देते हैं और अपने सत्य मिट्टी के परम सत्य बाप से कंबाइंड होकर कर्म करते हैं, कर्म योगी बन के कर्म करते हैं, तो ये शांति समझ में आने लगती है, विचारों पे कंट्रोल करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। क्योंकि 90% विचार कहां से? पास्ट से आ रहे होते हैं, पास्ट माना जो बीत गया, 90% विचार वहां से आ रहे होते हैं, तो सिर्फ 10% ही विचार रह जाते हैं, 40 विचार आ रहे थे, अभी सिर्फ 4 ही विचार रह गए एक मिनट में, इसको शांति कहते हैं। ये प्रोसेस समझ में आ गया जब हम बाबा के साथ महसूस, बाबा पता, हम बाबा को देखते हैं, बाबा के सबको सबको प्यार करता है, बाप दादा आते हैं सबको मीठी मीठी दृष्टि देते हैं, बहुत प्यार से सबको दृष्टि देते हैं, कोई कैसा भी हो, पापी हो कैसा भी, नए नए लोग भी मिलने आते हैं बाबा से, बाबा के सामने दृष्टि लेने आते हैं, है ना, भले वो कैसे भी होते हैं बाबा सबको प्यार से दृष्टि देते हैं, सबको प्यार से पालना देते हैं, आतंकवादी को भी पालना देते हैं, कोई कैसा भी होता है, कोई बाबा की ग्लानी करता है उसको भी प्यार से, बाबा की श्रीमत पे चलता है नहीं चलता है, सबको बाबा प्यार से दृष्टि, सबको एक जैसे पालना देते हैं, सबको एक्सेप्ट करते हैं, सबको पालना करते हैं, यही तो प्यार है, इसीलिए इसको प्यार का सागर कहते हैं। तो जब ऐसे जब बाबा के साथ हम रहने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं बाबा ऐसा है, तो हमारे अंदर भी वो प्यार हम सबको एक्सेप्ट करने लगते हैं, तो सबको बिना किसी शर्त के दिल से सम्मान से स्वीकार करना उसके हर पार्ट को, और उनकी बराबर पालना करना, ग्लानी करने वाले की महिमा करने वाले की दोनों की बराबर पालना करना, इसको प्यार अंदर समझ आने लगता है। और जब ये ऐसा प्यार समझ में आने लगता है, थोड़ा थोड़ा व्यवहार में आने लगता है, तब अतिंद्रिय सुख क्या होता है, जब सारे विश्व में हर आत्मा को उसके दिल से स्वीकार करके उसकी पालना बराबर करने की समझ आ जाती है, तब हम बाबा से जुड़ने लगते हैं, फिर उन्हें लगता है कि हाँ बाबा ही मेरा संसार है, बाबा ही सब कुछ है, तब हम बाबा से ऐसा फीलिंग आती है उस पर उसको कि पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, मुझे सिर्फ बाबा चाहिए कुछ और नहीं चाहिए, और उसी से सर्व प्राप्तियां मुझे होने वाली हैं, वही मुझे संतुष्टता, मेरे को उसी से मैं संतुष्ट होने वाला हूं, उसी से मेरी इच्छा मात्रम की विद्या की स्टेज आने वाली है। और जब ये समझ में आती है तो इच्छाएं एकदम कम होने लगती हैं, और फिर आनंद की स्थिति, अर्थात मैं आत्मा परमात्मा में समाया हूं, नदी सागर में समा के सागर बन गई, इसको कहते आनंद, लवलीन स्थिति। और जब ये आनंद की स्थिति महसूस होने लगती है तो विवेक जागृत होता है, सत्य को परखने की शक्ति जागृत होने लगती है। तो कैसे बुद्धि हमारी कैसे चेंज हो रही है, दिल में सत्य है तो मेरी बुद्धि क्या हो रही है, दिल में सत्य था तो विवेक जागृत होना शुरू हुआ, पर दिल में भी क्या कब आया विवेक, कब जागृत होता है, जब हम सत्य की समझ में रहने लगते हैं, वैसा व्यवहार करने लगते हैं, पवित्रता समझ में आने लगती है और उसको व्यवहार में आने लगते हैं, शांति व्यवहार में आने लगती है, प्रेम व्यवहार में आने लगता है, खाली बातों में नहीं, कहने सुनने में नहीं, सुनने सुनाने में नहीं, प्रैक्टिकल व्यवहार में आने लगता है। अतिंद्रिय सुख, इंद्रियों का सुख छोड़ देते हैं, आंखों का सुख, देखने का सुख, पढ़ने का सुख, सुनने का सुख, बोलने का सुख, ये सुख छोड़ करके हम अतिंद्रिय सुख को उसमें रहने का अभ्यास करना शुरू करते हैं, जिसे को देही मानी स्थिति कहा जाता है। हम देह में रहते, दुनिया में रहते, गृहस्थ में रहते हुए ये अभ्यास करते हैं, मनन चिंतन मंथन सिमरन करते रहते हैं, तो तब जाकर के आनंद की स्थिति अनुभव होने लगती है, तब उस विवेक जागृत होता है। विवेक माना सत्य को परखने की शक्ति, परम सत्य को परखने की शक्ति जागृत होने लगती है। और ये जो परम सत्य को परखने की शक्ति जागृत होने लगती है तो समाधान स्वरूप कैसे बनना है, मैं इस पे जा रहा हूं ना, कि कैसे जब परम सत्य को परखने की शक्ति हो गई तो ये लगता बस यही है यही है यही है, तब यथार्थ निर्णय करने की शक्ति जागृत होने, तब दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव होने लगती है, तब दिव्य बुद्धि दिव्य बन जाती है, या यूं कहें यथा निर्णय करने की शक्ति एकदम एक्यूरेट बन जाती है। और जब निर्णय करने की शक्ति एक्यूरेट बनती है तब जो नियम मर्यादाएं होती है ना हमारी, चार नियम चार मर्यादाएं, उनमें दृढ़ता आती है। जैसे मान लीजिए मुझे अभी प्लेन से उड़ना है, तो प्लेन में से अब मुझे कहीं जाना है, मान लीजिए मेरी कार है, मैं कार में चेक करता हूं, मुझे जाना है 700-800 किलोमीटर दिल्ली जाना है, या मुझे बॉम्बे जाना है, 700 किलोमीटर है बॉम्बे यहां से, कार में जाना है, तो हम कार में चेक करते हैं डीजल पेट्रोल ठीक है, ऑयल है, पानी ठीक है, ब्रेक ठीक है, चेक करते नहीं करते। सेम वे जब हमने दृढ़ अंदर जब परम सत्य को परख लिया, मुझे जाना है बाबा के पास, सूक्ष्म वतन में जाना है, मुझे परम धाम में जाना है, मन बुद्धि के साथ जाना है, तो हम क्या करते हैं, तब हमारे अंदर हम चेक कर लेते हैं कि ऊपर जाने का पासपोर्ट कौन सा है। ऊपर जाने का पासपोर्ट है ये मुरली, ये जितनी बाबा की मुरली का सारा दिन मनन चिंतन मंथन चलता है ना, जिसका जो रोज की मुरली हम सुनते हैं ये पासपोर्ट है, मुरली पासपोर्ट नहीं है कि मुरली दिखानी नहीं है कि बाबा देखो पासपोर्ट मेरे पास है, ये मुरली कितनी मेरे दिल में समाई हुई है। और मुरली किसके दिल में समाती है, जिसके दिल में बाबा समाया है, तो बाबा मुरली उसके उसको उसको याद आती है, जो दिल में समाया होता ना उसकी कही हुई बातें याद आती है, जिसके दिल में जो समाया होता उसी कही हुई बातें याद आती है। समस्या का कारण क्या है, हमारे दिल में क्या समा गया है, मनुष्यों के दिल में क्या समा गया, हमारे दिल में नहीं, हमारे दिल में पहले समाया हुआ था, क्या समाया है, समस्या क्यों है, क्योंकि मनुष्यों के दिल में क्या समाया हुआ है, वो दुखी क्यों है, ज्यादा परेशान क्यों है, समस्याओं से भरे क्यों हुए, क्योंकि उन दिल में देहभान समाया हुआ है, देह अभिमान समाया हुआ है, देह अभिमान के संबंध संपर्क समाये हुए हैं, देह अभिमान के पदार्थ जो जिनकी जो प्रॉपर्टी है वो समाई हुई है, और देह अभिमान से पैदा होने वाले पांच विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आसुरी स्वभाव है, और पांच विकारों से के वश में कोई जो कर्म किए ना उससे आत्मा की सातों चैतन्य आत्म ऊर्जाएं कम हो जाती है, और उससे पैदा होने वाले आसुरी संस्कार आदतें बन गई हैं। कौन कौन सी आदतें बन गई, आत्मा के नीचे तो अलर्ट और एक्यूरेसी है, किंतु ये पांचों विकारों के वश में कर्म किए उससे आलस्य और अलबेलापन। ब्राह्मणों में नंबर वन दुश्मन कौन है, इसमें विकार नहीं है, पांच विकार स्थूल रूप में नहीं है, आलस्य अलबेलापन सबसे बड़ा विकार बन गया है, तो ये आदत बन गई है, तो ये आदत है। दोष दर्शन आत्मा के नेचर गुण दर्शन है, गुणों में व्यवहार है, किंतु पांच विकारों को जब कर्म करते हैं तो हमारी नेचर कहे तो क्या हो जाती है, गुण दर्शन की बजाय अवगुण दर्शन, हम हंस की बजाय बगले बन जाते हैं, और आत्मा का स्वभाव रहमदिल है, नेचुरल नेचर रहमदिल है, नेचुरल संस्कार रहमदिल का है, परमात्मा का संस्कार क्या है, रहमदिल, और हमारा संस्कार भी क्या है, रहमदिल, कल्याणकारी का है, किंतु जब हम अभिमान के वश होके कर्म करते हैं तो हमारे अंदर क्या जाता है, बदला लेने की भावना, हॉस्टाइल नेचर रिवेंजफुल नेचर आ जाती है, और आत्मा का स्वभाव कैसा, आत्मा की संस्कार क्या है, निश्चय विश्वास का है, आत्मा का संस्कार है निश्चय विश्वास, किंतु जब हम पांच विकारों को शोक कर्म 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 करते हैं तो संशय, स्वयं में भी संशय, बाप में भी संशय, ड्रामा में भी संशय, और परिवार में भी संशय। आत्मा का निश्चय विश्वास है, किंतु जब हम देवमान के वशोक कर्म करते हैं तो क्या आदत बन जाती है, स्वयं में भी विश्वास नहीं है, अनुमान लगाते हैं, बाबा पे भी अनुमान लगाते हैं, पता नहीं मदद करेगा नहीं करेगा, ड्रामा पे भी हमें विश्वास नहीं होता है, ड्रामा पे भी अनुमान लगाते हैं, पता नहीं ड्रामा में क्या लिखा हुआ है, और हम परिवार पे भी विश्वास नहीं कर पाते, और आत्मा की नेचर है बेफिक्र बादशाह, निश्चिंत अवस्था और निर्भय, और जब जब देहाभिमान के वश कर्म करते हैं तो चिंता और भय हमारी नेचर समाज संस्कार बन जाता है। आज मनुष्य की नेचर बन गई, संस्कार बन गया है, चिंता और भय। सारा समय चिंताएं में खोए हुए, चिंताओं के सागर में खोए हुए और भय में जीवन जी रहे हैं, भय में खा रहे हैं, भय में सो रहे हैं, है ना। और फिर आत्मा का नेचर जो है, आत्मा का संस्कार क्या है, धैर्यता, पेशेंस। और जब हम देह अभिमान के वश कर्म करते हैं, पांच विकार के वश कर्म करते हैं, तो हमारा संस्कार क्या बन जाता है, हमारा संस्कार बन जाता है जल्दीबाजी का, हमेशा प्रेशर में रहने का, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, कंपटीशन का, कंपैरिजन का संस्कार बन गया है। ये है समस्या। और हर समय ईर्ष्या द्वेष का, एकदम राग द्वेष में फंसे हुए। बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं, जो कल बाबा ने कहा, बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं। वैराग्य माना क्या, ना वैर ना राग। देह अभिमान के बस जब रहते हैं तो क्या होता है, राग द्वेष में फंसे रहते हैं। और जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं आई है, तब तक हम क्या नहीं कर सकते, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते, मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता नहीं बन सकते। ये लास्ट का हमारा पेपर है ना, तो ये हमें समझ लेना है कि दिल में अगर सत्य है, दिल में अगर सत्य है, देहभान, देवीमान, देवीमान के संबंध, संपर्क, देवीमान के पदार्थ और देवीमान से पैदा होने वाले पांच विकार और उनके वश होकर कर्म करने से जो दस संस्कार हमारे हैं अंदर, आसुरी संस्कार बन गए हैं, वो दिल में अगर बस गए हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, मेरे अंदर अपवित्रता महसूस होती है, अशांति महसूस होती है, प्रेम की बजाय क्रोध आता है, लोभ की बजाय और उसके बजाय मोह आता है और अहंकार आता है। और उससे क्या पैदा होता है, हमारा विवेक कंफ्यूज हो जाता है, तीसरी आंख बंद हो जाती है, परम सत्य को परख नहीं सकते हैं। जिसके दिल में सत्य है वो परम सत्य परमात्मा को भी परख नहीं सकता है। इसके लिए उसको मुरली समझ में नहीं आती है, उनको बाबा का शब्द सुनना भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे बहुत भाई बहन अनुभव सुनाते हैं, दिल वाले जो कैट प्रोग्राम में आते ना, कहते मेरी पत्नी ज्ञान में आती थी, मेरी पत्नी 10 साल से ज्ञान में चलती थी, अब उसको हार्ट अटैक आया, तो यहां पे आकर सुनाते हैं कि मेरी पत्नी, मैं रोज पत्नी को सेंटर पे जाता था, पत्नी ऊपर जाती सेंटर में जाती थी और मैं नीचे कार में बैठा रहता था, कभी सेंटर में गया नहीं एक बार भी, और जब वो मुरली सुन के आती थी मैं उसको घर ले आता था, कि 10 साल मैं सेंटर पे एक दिन भी नहीं गया। जब हार्ट अटैक उसकी पत्नी जबरदस्ती लेके आई, उसको हार्ट अटैक आया, तब उसने जाना शुरू किया, तब बाबा दिल में आया ना, तब उसको मुरली अच्छी लगी, तब बाबा को उसने परखा, तब निर्णय किया, यथार्थ निर्णय किया। तो जिसकी निर्णय शक्ति, जिसकी बाबा को परखा ही नहीं, वो यथार्थ निर्णय नहीं कर सकता है। तो पवित्रता को धारण करना, शुद्ध सात्विक भोजन खाना, ये हमारे रूल है। जैसे हम कार में चेक करते ना, पेट्रोल, पानी, ऑयल चेक करते ना, मुझे ऊपर जाना है, पासपोर्ट तो है मुरली, तो मुरली पासपोर्ट है, मुरली का मनन चिंतन करने से ही हमारा दिल सच्चा और साफ बनेगा, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति समझ में आएगी, सत्य को परखने की शक्ति आएगी और निर्णय शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति आएगी, और तब हमारे अंदर क्या होगी, दृढ़ता आएगी कि मुझे शुद्ध सात्विक भोजन ही खाना है, कि जैसा अन्न वैसा मन, मुझे बस बाबा और मुरली का ही संग करना है, सत्संग माना सत्य का संग, तब मुझे समझ में आएगा, तब मेरे अंदर पवित्रता, मतलब अंदर से जैसे मन, तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, धन की पवित्रता, संबंध संपर्क की पवित्रता, सोपन की भी पवित्रता जब अंदर आएगी, और जब पवित्रता आएगी तो दैवी गुणों की धारणा, एक गुण जैसे और दैवी गुणों को ले आएगा, धैर्यता आएगी, गंभीरता आएगी, सहनशीलता आएगी, करंट खींचने की ताकत आएगी। तो चार हमारे जो पिलर्स है ना, जब पिलर मजबूत होंगे, कौन कौन से, संपूर्ण पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा, तो चारों हमारे अंदर है कि नहीं। तो पासपोर्ट क्या है, मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरन, और वीजा क्या है, पवित्रता, कितनी पवित्रता मेरे अंदर आई है, शुद्ध सात्विक, अन्न की, तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, अन्न की पवित्रता, धन की पवित्रता, संघ की पवित्रता, जितनी ज्यादा पवित्रता आती जाती है, मेरी कैटेगरी वीजा की कैटेगरी होती है। कई लोग जो होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का वीजा अलग होता है, उनको रेड कार्पेट वेलकम करते हैं एयरपोर्ट पे, और कई लोगों की चेकिंग होती है, तो कौन सी कैटेगरी का वीजा मुझे चाहिए, और टिकट क्या है? टिकट भी चाहिए ना ऊपर जाने के लिए। टिकट है दैवी गुणों की धारणा। टिकट की भी कैटेगरी होती है, कितनी मेरे अंदर शांति आ गई है, मैं पास को कितना फुल स्टॉप लगा सकता हूं, एक सेकंड में लगा सकता हूं, लगा सकता हूं। क्योंकि उड़ने के लिए क्या चाहिए? सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की ताकत चाहिए। प्रेम माना सबको एक्सेप्ट करने की ताकत चाहिए। धरती को छोड़ने के लिए क्या चाहिए? सबको एक्सेप्ट करने की ताकत, बिना किसी शर्त के दिल से सम्मान से स्वीकार करना, उनके बराबर पालना करना, बेहद का प्यार, स्नेह, रूहानी स्नेह जिसे कहते हैं। जब ऐसी स्नेह हमारे अंदर होता है ना, तो हम उड़ सकते हैं। तो शांति और प्यार, रूहानी प्यार, रूहानी स्नेह रूपी हमें टिकट चाहिए, तब रॉकेट ऊपर उड़ता है। तब ये सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर क्या? हमारा मन, मन रूपी सूक्ष्म शरीर तब तैयार होता है। तो दिव्य बुद्धि रूपी इंजन तैयार हो गया ऊपर लेने के लिए, जाने के लिए, किंतु मन रूपी लाइफ का सूक्ष्म शरीर चाहिए ना। और संस्कार क्या है? ये चार नियम, चार मर्यादा, ये चार मर्यादा, ये संस्कार, ये ड्रेस बन जाती है सूक्ष्म शरीर की। और चार नियम कौन से? पावरफुल अमृत वेला, ये हमारी ड्रेस बन जाए। जितना अभ्यास पावरफुल अमृत वेला का, बीज रूप स्थिति में स्थित होकर बास्टर बीज रूप बन के बाबा से कंबाइनों का अभ्यास रहेगा रोज का, और सारा संगम ही अमृत वेला जैसे, और मुरली, बाबा की मुरली का मनन चिंतन, मुरली सुनो और फिर सारा दिन अटेंशन मुरली पर, बाबा ने क्या कहा वो अटेंशन। और फिर चौथी बात, सोने के पहले सच्चा सच्चा समाचार बाबा को देना, ईमानदारी से, सच्चाई से। बाबा ने कहा बाबा के दिल पे कौन चढ़ता है, था ना परसों की मुरली में, तो बाबा के दिल पे सच्चे बच्चे ही चढ़ते हैं जो हर समाचार बाबा को देते हैं, हर समय बाबा की राय लेते हैं, एक एक बात बाबा को बताते हैं, कुछ छिपाते नहीं है, वो बाबा के दिल पे चढ़ते हैं। तो चार बातें हो गई, चार हमारे नियम कौन से हैं? पावरफुल अमृत वेला, मुरली, अटेंशन और वेंटिलेशन। तो ये जब बन जाता है ना, तब ये सूक्ष्म शरीर तैयार होता है, तब विस्तार को सार्वलिक शक्ति आती है। तब विस्तार को सार्वलिक शक्ति माना, तब देव की दुनिया से मन बुद्धि को समेट करके सूक्ष्म शरीर के साथ हम सूक्ष्म वतन में बाप दादा की सारूपी गोद में पहुंच जाते हैं, बाबा के पास पहुंच जाते हैं। तब बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करते हैं, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन सर्जन, बच्चा। अब देखिए ये, आप देखिए समस्या कहां आई है। जिसके दिल में असत्य था उसका विवेक कंफ्यूज, निर्णय शक्ति भ्रष्ट, और वो विस्तार को सार में ला नहीं सकता, वो सार को विस्तार में ले जाता है, राई का पहाड़ बना लेता है। छोटी सी बात उसके लिए बहुत बड़ी बन जाती है, समेटनी शक्ति होती नहीं है, सहन होता नहीं है, समाया जाता नहीं, सामना होता नहीं, किसी के सहयोग कर नहीं पाते, इसलिए वो शक्तिहीन हो जाते हैं, दुखी और अशांत हो जाते हैं, परेशान रहते हैं। और फिर जो ये जो है ना, दिल, विवेक, निर्णय शक्ति और उसके बाद चित्त, ये बुद्धि के चार एस्पेक्ट हैं, दिल, विवेक, निर्णय शक्ति और चित्त। तो छह शक्तियों से मिलकर चित्त बनता है, सबकॉन्शियस माइंड बनता है, और चित्त के आधार पर चिंतन, कॉन्शियस माइंड काम करता है। चिंतन मेरा क्यों चल रहा है, चिंतन कैसा चल रहा है? अगर मेरा चित्त अशांत, चंचल, बेचैन है, दिल में असत्य है, तो मेरा विवेक कंफ्यूज है, निर्णय, विवेक क्या है, विवेक तीसरी आंख बंद हो गई, निर्णय शक्ति भ्रष्ट हो गई, निर्णय हमारा हो नहीं रहा, कुछ भी जो निर्णय कर रहे गलत निर्णय कर रहे हैं, तो चित्त मेरा अशांत, चंचल, बेचैन हो गया। कौन सी फाइलें खुल रही हैं? तमो प्रधान फाइलें खुलती है, सारा टाइम बस उसने मेरे को ये कहा, उसने मेरे को ये कहा, उसने मेरे से ऐसा किया, उसने मेरे से ऐसा किया, मेरे ये हो रहा है, मेरे हार्ट की बीमारी है, मेरे को डायबिटीज है, मेरे को ये तकलीफ है, मेरे घुटने खराब है, मेरे कमर, इन्हीं का गायन चलता है, इसी का चिंतन चलता रहता है। यही समस्या है, यही समस्याएं हैं, उसी का चिंतन चलता है। मन के चार एस्पेक्ट हैं, संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति, टीम जिसे कहते हैं इंग्लिश में, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज। फिर विचार कैसा चलता है? विचार चलता है इन्हीं बातों का, तन का, देवभान का, देवीमान का, देवीमान के संबंध संपर्क का, पदार्थों का और आसुरी स्वभाव संस्कार का, यही चलता है, सारा इन्हीं का चिंतन चलेगा। संकल्प इन्हीं का गहराई में जाते हैं, फिर वैसी भावनाएं, दुर्भावनाएं पैदा होती हैं, किसी के लिए या तो किसी के लिए ऐसा होगा उसके बगैर मैं रह नहीं सकता, या उसका होगा उसको मैं देख नहीं सकता, ऐसी भावनाएं पैदा होती हैं, दुर्भावनाएं पैदा होती हैं, और उस भावनाओं में, जिस भावना में दिन रात रहते हैं, फिर वैसी वृत्ति बन जाती है, तो देहिक वृत्ति बन जाएगी, रूहानी वृत्ति नहीं बनती है, देहिक वृत्ति, फिर देहिक दृष्टि और देहिक वायुमंडल रहता है और वैसी स्मृतियां रिकॉर्ड हो जाती हैं, वैसे हमारे बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं, वैसे हमारे इंप्रेशंस, फिर वैसा ही चेहरा और चलन दिखाई देता है, अशांति का वायुमंडल बनता है, वैसा ही व्यवहार, ऐसा ही आहार और ऐसा ही विहार उनका होता है। तो आज ये समस्याओं के कारण जड़ क्या है, दिल में क्या है, राइट। अब मुझे अगर सचमुच में समाधान चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दिल में बाबा को बिठा लो बस, दिन रात सच्ची दिल, बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, देवभान, देवभिमान, देव संबंध संपर्क पदार्थ को निकाल दो, और ये मुरली साबुन है जिससे दिल को हम चमकाते हैं। मुझे याद है दादी जी, बड़ी दादी जी थे ना, दादी प्रकाशमणि जी, तो मैं उनके सर काफी समय रहा, उनका पर्सनल फिजिशियन भी रहा, और दादी से रोज मिलना होता था। दादी जब अकेली होती थी कभी कभी उससे कुछ कह देती थी, पूछती थी। एक दिन दादी ने कहा, गुप्ता जी इंचार्ज किसे कहते हैं? दादी इंचार्ज माना हमारे शांतिवन में, नहीं माउंट आबू की बात है, हमारे वहां पे 40 डिपार्टमेंट थे उस समय। तो मैंने कहा दादी हमारे यहाँ 40 डिपार्टमेंट है, वो जो उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसको इंचार्ज कहते हैं। नहीं नहीं इंचार्ज उसका रियल मीनिंग क्या है दादी आप बताओ। दादी ने कहा इंचार्ज माना जो इन रह के, मतलब अंदर रह के अपने आप को चार्ज करता रहता है हमेशा, पावर हाउस, परमात्मा पिता से हमेशा चार्ज करता रहता है, अपने अंदर ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों से भरपूर करता रहता है, अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने संस्कारों को, अपने पांचों कर्मेंद्रियों को, आंखों को भी चार्ज करता है, कानों को भी चार्ज करता है कोई बुरी बात ना जाए, नाक को भी चार्ज करता है श्वास शांति के आए, मुख को भी चार्ज करता है, एक एक अंग को, हार्ट को भी चार्ज करता है, लिवर को भी चार्ज करता है, पूरे एक एक अंग को, एक एक रोम रोम को चार्ज करता है, वो है इंचार्ज। और जो भी उसके संबंध संपर्क में आते हैं उनको भी पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद के वाइब्रेशन देता रहता है, वो इंचार्ज है। अगर हम गुस्सा करके कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं किसी को तो आउट चार्ज है, आंख दिखा के कंट्रोल करते ना गुस्सा करके, वो आउट चार्ज है, वो इंचार्ज नहीं है। कल बाबा ने कहा निमित्त भाव, निर्माण, निर्माण और निर्वाण। तो ये इंचार्ज माना अंतर्मुक्ता, कि मैं हर समय सोचने से पहले अगर मुझे सचमुच में समाधान स्वरूप बनना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। अंतर्मुखी माना अंदर में जो मैं आत्मा हूं उस परमात्मा से कंबाइंड होकर के फिर सोचना, परमात्मा से कंबाइंड होकर निर्णय करना, परमात्मा से कंबाइंड होकर देखना, परमात्मा से कंबाइंड होकर कुछ पढ़ना है तो बाबा से कंबाइंड होकर पढ़ो, बाबा से कंबाइंड होकर सुनना, किसी की सुनना, बाबा से कंबाइंड होकर बोलना, बाबा से कंबाइंड होकर पानी पीना, बाबा से कंबाइंड होकर खाना खाना, बाबा से कंबाइंड होकर ही चलना, बाबा से कंबाइंड होकर हाथों से कर्म करना, बाबा से कंबाइंड होकर किसी से व्यवहार में आना, कुछ कहीं पर भी, घर में या बाहर। तो ये अंतर्मुखता है। जब ऐसा अंदर का सुख मिलने लगता है ना तो बेहद की वैराग्य वृत्ति, तब बेहद की वैराग्य वृत्ति आती है, तब वैर और राग खत्म होता है। ब्रह्मा बाबा का पहला कदम यही था। मुझे याद आता विश्वतन दादा से हमारा बहुत संबंध, जब हम आए ना तो बाबा ने हमको बहुत पालना दी विश्वतन दादा ने, तो मुझे ब्रह्मा बाबा के विशेष 8 कदम सुनाए जो बाबा ने बाबा के अंदर देखे, ब्रह्मा बाबा के अंदर देखे। तो बाबा कहते, विश्वतन दादा बताते थे, पहला कदम सचमुच में गुप्ता जी मुझे बताते थे, अगर आपको बाबा को फॉलो फादर करना है तो पहला कदम ब्रह्मा बाबा का था अंतर्मुक्ता, हमेशा अंदर रहो, गुप्त रहो, अंदर अंदर पुरुषार्थ करो, अंदर बाबा से हर समय कंबाइंड होकर रहो, सोचना, निर्णय करना, देखना, सुनना, बोलना, खाना पीना, लोगों से कर्म, मिलना जुलना, सब कुछ बाबा से कंबाइंड होकर, यह अंतर्मुक्ता है। जब अंदर का सुख आने लगा तो बेहद की वैराग्य, अपने आप बेहद की वैराग्य वृत्ति आती जाए। दूसरा कदम बेहद की वैराग्य वृत्ति, बाबा का दूसरा कदम बेहद की वैराग्य वृत्ति था, किसी से भी वैर नहीं, किसी से राग नहीं, बेहद की वैराग्य वृत्ति होती है, अनासक्त वृत्ति आने लगती है, खाने की इच्छा, देखने की इच्छा, ये खा लूं, इससे मिल लूं, उससे मिल लूं, वो भी खत्म, फिर उपराम वृत्ति आने लगती है, फिर उपराम वृत्ति आई तो एकांतवासी, एक के अंत में खोने लगते हैं, एकांत में बस एक बाबा के अंत में याद में खो गए, एकांतवासी बनने लगते हैं तो क्या आने लगता है, एकाग्रता आने लगती है, एकाग्रता थी एक नामी आने लगती है, जब एक नामी आने लगते हैं तो वैसे एक नामी आने लगती है, तब एकमत होने लगते हैं और तब एकर स्थिति आने लगती है। तो जब अंदर से इतनी एकरस स्थिति आने लगती है ना, तब बाबा ने क्या किया, वो स्थिति आने लगी तो बाबा की पधरामणी हो गई, तब दिल शिव बाबा उनके दिल में आया, शिव बाबा की पधरामणी हो गई। और शिव बाबा की पधरामणी होते ही बाबा ने क्या किया, एक सेकंड में तन मन धन और संबंध संपर्क चारों समर्पण कर दिए। तो तीसरा कदम यह है, अगर सचमुच में हमें समाधान स्वरूप बनना है तो मुझे भी ब्रह्मा बाप समान अपना तन पुराना मन पुराना धन और पुराने संबंध संपर्क चारों बाबा को सभा कर दो। ये बाबा आज से ये तन मेरा नहीं आपका है, मेरी आपकी अमानत है, जैसा आप कहेंगे उसको मैं वैसे यूज करूं। ऐसे ब्रह्मा बाबा ने यूज किया। मन को भी बाबा जो आप संकल्प देंगे वही मैं संकल्प करूंगा। बाबा धन माना समय श्वास और संकल्प, चौथा धन स्थूल धन। बाबा ने धन भी लगा दिया, कभी 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 वर्णन नहीं दिया, अपने समय को श्वास को संकल्प को बस बाबा में लगाया, वो बाबा को दे दिए। और फिर चौथा धन संबंध संपर्क, वो भी बाबा ने बाबा की बाबा एक बार आ गया ना बस, तो बाबा ने अपने पुराने संबंध संपर्क को स्वाहा कर दिया। सचमुच में बाबा का बाबा समाधान स्वरूप बनना है, दिल में बाबा सदा समाया रहे, तीसरी आंख खुली रहे, निर्णय शक्ति यथार्थ हो जाए, सारे टाइम विस्तार को सार मिलन शक्ति हमेशा बाबा की गोद में समाया रहूं और वहां से भी समेटने की शक्ति, अशरीरी आत्मा बन के परम धाम कर मैं अशरीरी बाप से कंबाइंड हो जाऊं, करंट बैटरी चार्ज होने लगे तो इतनी करंट, इतने मेरे हार्मोन केमिकल्स ऐसे रसायन निकल आते हैं सारे शरीर में, ऐसे हार्मोन्स एंडोर्फिन्स एंड कैफेलिन्स पैदा हो जाते हैं, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स निकल आते हैं, सारी चैनल्स खुल जाती हैं कि मुझे अतिंद्रिय सुख आनंद की अनुभूति होने लगती है और इतने मुझे कोई पेन, हार्ट की दर्द हो, कमर की दर्द हो, डिप्रेशन हो, उदासी हो, सारी गायब हो जाती है। तो सहन करने की शक्ति आ जाती है, समाने की शक्ति आ जाती है, सामना कर कुछ कितनी बड़ी समस्या हो सामना करने की शक्ति आ जाती है, और जो तंग कर रहे हैं उनको भी सहयोग करने की शक्ति आ जाती है। तो आठों शक्ति अंदर आ जाती है, फिर सातों एनर्जी का बैलेंस हो जाता है, हीलिंग एनर्जी आती है, फिर ज्वालामुखी योग अग्नि पैदा होती है, तब जाके मेरा चित्त शांत एकाग्र आनंदमय होता है। चित्त कैसा होता है, दिल में अगर सत्य है, विवेक जागृत है, निर्णय शक्ति दिव्य है, तो चित्त शांत एकाग्र आनंदमय हो जाता है, तब मुरली का सारण चिंतन चलता है। दुनिया की कोई बातें याद ही नहीं आती है, बाबा ने क्या कहा सारे टाइम बुद्धि में ही रहता है, बाबा ने ये वरदान दिया, बाबा ने आज ऐसा कहा, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है। आज का स्लोगन ये था कि आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो क्या है, स्वस्थ कौन है, जो सदा आत्मिक स्थिति में रहते हैं। स्वस्थ माना स्व माने आत्मा, अस्थ माना स्थित, आत्मिक स्थिति में स्थित माना स्वस्थ। तो सारा दिन मैं आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करता हूं, तो ऐसी प्रैक्टिस हो जाती है। तो चिंतन जब हम संकल्प क्या आता है, जब उस संकल्प को गहराई से करते हैं तो भावना बन जाता है और भावना से वाइब्रेशन निकलते हैं, मेरे वाइब्रेशन बाबा तक जाते हैं, बाबा के वाइब्रेशन मेरे तक आते हैं। बाबा कहते याद से याद मिलते, जब तुम मुझे याद करते सच्ची दिल से तो मैं तुमको हजार गुना याद करता हूं। तो बाबा छत्र छाया बन जाता है, कैचिंग पावर टचिंग पावर आने लगती है, और कैचिंग पावर टचिंग पावर आने लगती है तो क्या होता है, मैं सारे दिन उसी भावना में रहता हूं, उसी वाइब्रेशन में रहता हूं, तो क्या होता है, मेरी वृत्ति रूहानी वृत्ति बन जाती है। जैसे पंखा घूमता है ना, पंखा घूमता है तो वो पंखड़ियां नजर नहीं आती हैं, तो देहभान भूल जाता है, देहभिमान भूल जाता है, देहभान के संबंध संपर्क भूल जाते हैं, पदार्थ भूल जाते हैं, और आत्मा के गुण जो ठंडी हवा महसूस होती ना, तो पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद और शक्ति का वायुमंडल बन जाता है, तो वो मेरे अंदर रिकॉर्ड होने लगता है, वो मेरे इंप्रेशंस बनने लगते हैं, वो मेरे बिलीफ सिस्टम चेंज होने लगते हैं। मेमोरीज कब बनती है, जब उस स्थिति में स्थित होकर मैं कर्म करता हूं ना, बिना कर्म किए फिर उस वायुमंडल में रहकर मैं वैसे देखता हूं, देखना भी कर्म है ना, पढ़ता हूं, सुनता हूं, बोलता हूं, कर्म करता हूं, खाना खाता हूं, पैदल करता हूं, तो वो रिकॉर्ड होता है, तब वो रिकॉर्ड होकर चेहरा बन जाता है, चेहरा और चलन, हर कर्म मेरा तब रिकॉर्ड होता है, तब जाके अनुभव बनता है। तो जो बाबा की मुरली है उसको रिवाइज और रियलाइज करते करते, तो बाबा का एक कदम थे, पहला कदम कौन सा था, अंतर्मुखता, दूसरा बेहर की वैराग्य वृत्ति, तीसरा था तन मन धन संबंध संपर्क का समर्पण, तब योग लगना शुरू होता है, तब तपस्या शुरू होती है। बाबा ने एक तपस्या मुरली में कहा था, तपस्या माना क्या, स्वराज्य अधिकारी की स्थिति, तपस्या माना क्या, तपस्या माना मैं तेरा तू मेरा, तपस्या माना क्या, तपस्या माना मोजों का अनुभव, परमात्मा मिलन की मौज का अनुभव, और तपस्या माना क्या, तपस्या माना योग का प्रयोग, जो खजाने मिले ना, जो बाबा ने बताया ना, समय संकल्प श्वास ज्ञान गुण शक्तियां और दुआएं, इनका प्रयोग करना, ये है तपस्या। तपस्या माना दिल बुद्धि मन और तन, दिल बुद्धि मन, दिल सच्ची और साफ, बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर, मन क्लीन और तन रोम रोम में बाबा की सातों एनर्जी, आंखों में भी नाक कान रोम रोम में बाबा, जैसे दादी थे ना, दादी दादी जी थे, बड़ी दादियां दादियां थी, दादी गुलजार, दादी जानकी जी थे, अभी दादी हमारी रतन मोहिनी जी हैं, देखो उनको टच करके देखो, रोम रोम में एनर्जी शांति प्यार खुशी भरी हुई है, तो वो तपस्या है, तपस्वी जीवन होता है। अगर समस्या मुक्त बनना है तो क्या करना पड़ेगा, निरंतर तपस्या में रहना पड़ेगा। तो क्या है समस्या का समाधान, क्या है समाधान स्वरूप स्थिति, कौन सी है, कौन सी है बोलो, समस्या का समाधान क्या है, बोलते नहीं हो, समस्या का समाधान तपस्या, समस्या का समाधान योग एक सब्जेक्ट है, किंतु तपस्या क्या है, तपस्या है चारों सब्जेक्ट से युक्त जीवन, ज्ञान युक्त, योग युक्त, दिव्य गुण गुण युक्त और बेहद की सेवा युक्त जीवन, दिन रात श्वासो श्वास ये स्थिति जिसकी होती है वो योग जो एक सब्जेक्ट है, योग है कनेक्शन और तपस्या है जीवन। तो जितनी अगर हमें समस्या मुक्त रहना है तो ऐसे सारा दिन मुरली का मनन चिंतन चलता जाएगा, हमारा अनुभव बनते जाएंगे। बाबा ने कहा था एक बार कि बिना सच्ची दिल की महसूसता के, रियलाइजेशन के, कभी भी अनुभूति नहीं होती, अनुभूति नहीं होती तो प्राप्ति नहीं होती, प्राप्ति नहीं तो तृप्ति नहीं होती, और तृप्ति नहीं होती तो पुराना स्वभाव संस्कार परिवर्तन नहीं होता। इसलिए बाबा की मुरली को रिवाइज और रियलाइज करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो अनुभव होता जाएगा, अनुभव होता जाएगा प्राप्ति होती जाएगी, तृप्ति होती जाएगी, तो पुराने स्वभाव संस्कार, जो समस्या के स्वभाव संस्कार परिवर्तन होते जाएंगे और हम समाधान स्वरूप बनते जाएंगे। ओम शांति।
तन का न गर्व की जय, ये तो विनाशी है, तू तो है चेतन आत्मा ज्योति अविनाशी है, ज्योति सागर पिता को दिल में बसा ले, दिल में बसा ले, राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले, तेरे उजाले, कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। पग पे मिलता है प्रभु का इशारा, इसके सहारे कर दे स्वाहा तू सारा। अंबर के सारे तारे आंचल में सजा ले, आंचल में सजा ले, मन के सरोवर में तू कमल खिला ले, कमल खिला ले, जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले।